ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सीबीएसई और एनसीबी ने वसंत विहार के स्कूल में नशे को ना और जीवन को हां अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी के दो नए मार्गों पर मोहल्ला बस का परीक्षण शुरू किया और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने महिला कोच में पुरुष यात्रियों के अवैध प्रवेश की रोक के लिए सभी लाइनों पर विशेष अभियान शुरू किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस फैसले से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में स्थानीय प्रतिभाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
करीब 234 सिटीज है जहाँ पे अभी भी प्राइवेट एफएम रेडियो नहीं है। 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से।
इस नीलामी के लिए अनुमानित आरक्षित मूल्य 784 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके उत्तर प्रदेश में 32, आंध्र प्रदेश में 22, मध्य प्रदेश में 20, राजस्थान में 19, बिहार में 18, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 11-11, पश्चिम बंगाल में 13 और असम में 6 नए निजी एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी। स्वीकृत जिलों में कई आकांक्षी जिले हैं और कुछ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। एफएम चैनल के माध्यम से इन क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के क्रमोत्तर विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। इससे देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और किसानों को मदद मिलेगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,456 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारतीय रेलवे की दो नई लाइनों और एक मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, यात्रा को आसान बनाएंगी, लॉजिस्टिक लागत को कम करेंगी, तेल आयात को कम करेंगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 121 किलोमीटर की जमशेदपुर पुरलिया आसनसोल की तीसरी लाइन और 37 किलोमीटर की सरडेगा भालूमुड़ा नई डबल लाइन को मंजूरी दे दी गई है।
ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1,52,757 करोड़। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुमानित निवेश 28,602 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख तक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं और विशेष रूप से राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए सड़कों का ऑडिट कराया जा रहा है। इसके अलावा एम्बुलेंस वाहनों और उनके कर्मचारियों को भी नई प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे दुर्घटना स्थलों से घायल लोगों को समय पर बचाने के कदम उठा सकें। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में छठे फिक्की सड़क सुरक्षा पुरस्कार और सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए ये बात कही। अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि देश में एक साल में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग इनमें अपनी जान गंवाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के अलावा लोगों के व्यवहार में बदलाव लाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। श्री गडकरी ने बताया कि सड़क पहल के नियमों के तहत शैक्षिक संस्थानों में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि इन नेताओं ने आम आदमी पार्टी के कथित अधूरे वादों से निराश होकर कांग्रेस का दामन पकड़ा है। उन्होंने आशा जताई कि नव सम्मिलित सभी नेता पार्टी के उद्देश्यों को अंजाम तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा आज राजधानी के वसंत विहार इलाके के एक स्कूल में नशे को ना कहें और जीवन को हां अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उससे जुड़े गंभीर खतरों के बारे में शिक्षित करना था। इस दौरान छात्रों को एक स्वस्थ और दवामुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी के 2 नए मार्गों पर मोहल्ला बस का परीक्षण शुरू किया। ये बसें कैलाश कॉलोनी मेट्रो से PNB गीतांजलि तक तथा लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से वसंत विहार तक 7 दिनों तक चलेंगी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज तथा विधायक सोमनाथ भारती और परमिला टोकस ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मोहल्ला बसों को हरी झंडी दिखाई। एक रिपोर्ट।
मोहल्ला बसें 196 किलोमीटर की क्षमता वाले 6 बैटरी पैक से सुसज्जित है जो 45 मिनट की चार्जिंग के साथ 200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेंगी। इन गुलाबी रंगों की बसों में 23 यात्री सीटें मौजूद हैं, जिनमें 6 सीटें महिला यात्रियों के लिए आरक्षित हैं। मोहल्ला बसों का किराया 10, 15, 20 और 25 रूपये निर्धारित किया गया है। महिलाएं पिंक पास के जरिए इन बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकती हैं। सरकार ने अगले वर्ष तक शहर में 2000 से अधिक मोहल्ला बसें शुरू करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि इन मोहल्ला बसों के संचालन से लाखों लोगों का फायदा होगा और इलेक्ट्रिक बसें होने की वजह से शहर में प्रदूषण भी नहीं होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, दिल्ली।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत आज सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT के नई दिल्ली परिसर के एक कार्यशाला में शामिल हुए। सभा में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं और शिक्षा प्राप्ति तभी संपूर्ण होती है जब विद्यार्थी को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान हो। श्री शेखावत ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो गर्व के साथ कह सकेगी कि उन्होंने भारत को बदला है।
भारत की संस्कृति जो केवल और ये जितना भी हमारा गीत है, हमारा संगीत है, हमारा गायन है, हमारी परंपराएं हैं, विभिन्न जो है हमारी विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये केवल एकदम से कहीं जो है ऐसी इमर्ज हो गई, ऐसा नहीं है। ये हमारे दर्शन के साथ में, हमारे जीवन मूल्यों के साथ में, ये हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ में परिमार्जित होते 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 अनेक अनेक सदियों के बाद में आकर के इस मुकाम पर खड़ी हुई।
सर्दियों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार कल एक विशेषज्ञ सम्मेलन आयोजित करेगी। एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा पर्यावरण मंत्री कार्यालय ने बताया कि ये सम्मेलन पर्यावरण विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के साथ मिलकर दिल्ली सचिवालय में किया जाएगा। इस सम्मेलन में केंद्रीय प्रदूषण जांच बोर्ड, पर्यावरण विभाग, मौसम विभाग और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग समेत 78 विभागों और संस्थाओं के पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस सम्मेलन द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर शीतकालीन कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जन भागीदारी के द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करना उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहेगा।
दिल्ली के अंदर सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसको लेकर के सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विंटर एक्शन प्लान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसी कड़ी में कल दिल्ली में जितने पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उन लोगों के साथ पर्यावरण सम्मेलन भी बुलाया गया है, जिससे कि एक बेहतर विंटर एक्शन प्लान बन सके और सभी दिल्ली वाले मिल करके प्रदूषण के स्तर को और कम करने में आगे बढ़ सके।
दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आज राजधानी के नागलोई स्थित प्रेमनगर में स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान जल बोर्ड ने समूह को जल और यमुना का संरक्षण करने के लिए सूचना और जानकारी प्रदान की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे द्वारा आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए अगले महीने से 5 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये सभी रेलगाड़ियां दिल्ली से बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच चलेंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने मेट्रो के महिला कोच के अंदर पुरुष यात्रियों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिए अपनी सभी लाइनों पर विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस और DMRC के जवानों का दल दिन भर निरीक्षण करेगा। ये दस्ता महिला कोचों में पुरुष यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश या दुर्व्यवहार पर निगरानी रखेगा। इन निर्देशों की अवज्ञा करने वालों को ₹250 जुर्माना देना पड़ेगा। जो उल्लंघनकर्ता इस जुर्माने को देने से इनकार करेंगे उन्हें ट्रेन से उतारकर दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस को सौंप दिया जाएगा। DMRC ने कहा कि यह अभियान महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधापूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज नई दिल्ली में किशोरियों और महिलाओं को सशक्त बनाने पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं के कौशल विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इन मुद्दों से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि भारत का औषधि क्षेत्र वर्ष 2030 तक $130 अरब का उद्योग बन जाएगा। ये वर्तमान में लगभग $55 अरब है। वे आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत दवाओं की मात्रा के मामले में तीसरे सबसे बड़े उद्योग के साथ दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत 3000 से अधिक फार्मा कंपनियों का घर है और इसके पास 10,500 से अधिक निर्माताओं का एक सशक्त तंत्र है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि जेनरिक दवाओं की मांग में हमारी हिस्सेदारी 20% है। श्री प्रसाद ने इस बात पर बल दिया कि सरकार साल 2047 तक देश के फार्मास्यूटिकल उद्योग को वैश्विक रूप से अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा और कुछ क्षेत्रों में हल्की धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली के भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और दिल्ली देहात की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में उपराज्यपाल से जमीन का नामांकन और हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी FM चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। CBSE और NCB ने वसंत विहार के स्कूल में नशे को ना और जीवन को हाँ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी के दो नए मार्गों पर मोहल्ला बस का परीक्षण शुरू किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने महिला कोच में पुरुष यात्रियों के अवैध प्रवेश पर रोक के लिए सभी लाइनों पर विशेष अभियान शुरू किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।